सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 33 हिंदी में नहीं है, में हिंदी नहीं है, हिंदी है ना, नहीं है। तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात्वयि बद्धसौहृदा विनायका निकप मूर्धसु तथा नते माधव तावका क्वचित् तथा नते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गास्त्वयि बद्धसौहृदा भ्रश्यन्ति मार्गास्त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो तथा नते माधव तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गास्त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो तथा नते माधव तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गास्त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो तथा नते माधव तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गास्त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो की अभक्तों की न नहीं ते वे भक्तगण माधव हे लक्ष्मीपति भगवान तावका भक्ति मार्ग के अनुयायी भक्तगण क्वचित किसी भी परिस्थिति में भ्रश्यन्ति नीचे गिरते हैं मार्गात भक्ति मार्ग से त्वयी आप में बद सौहृदा आपके चरण कमलों में पूरी तरह से अनुरक्त होने के कारण त्वया आपके द्वारा अभिगुप्ता सारे कष्टों से सुरक्षित विचरंती विचरण करते हैं निर्भया निर्भीक होकर विनायक अनिकप शत्रु जो भक्ति विचारधारा का विरोध करने के लिए साज सामान रखते हैं मूर्धशु अपने सिरों पर प्रभो हे प्रभु अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हे माधव पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हे लक्ष्मीपति भगवान यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं तात्पर्य सामान्यतया भक्तों का पतन नहीं होता किंतु यदि परिस्थिति बस ऐसा हो भी जाए तो भगवान उनकी प्रबल अनुरक्ति के कारण सभी परिस्थितियों में उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं भक्तगण गिर कर भी इतने प्रबल रहते हैं कि अपने शत्रुओं के मस्तकों पर चल सकें। हमने वास्तव में देखा है कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनेक विरोधी हैं जैसे डिप्रोग्रामर्स जिन्होंने हमारे भक्तों के विरुद्ध एक भारी मुकदमा चला रखा था हमने सोच रखा था कि इस मुकदमा के तय होने में काफी समय लगेगा किंतु भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं अतः हम आशा के विपरीत एक दिन में ही मुकदमा जीत गए इस तरह जो मुकदमा सालों चलने वाला था वह एक दिन में ही मुकदमा जीत लिया गया भगवान के संरक्षण के कारण एक ही दिन में तय हो गया क्योंकि भगवान भगवद गीता में वादा करते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानि हि न मे भक्तः प्रणश्यति हे कुंती पुत्र तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता इतिहास में भक्तों के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं यथा चित्रकेतु इंद्रदुम्न तथा महाराज भरत जो परिस्थिति वश्युत हुए किंतु फिर भी उनकी रक्षा हुई उदाहरणार्थ महाराज भरत एक हरिण के प्रति अपनी अनुरक्ति के कारण अगले जन्म में हिरण बने क्योंकि मरते समय उन्होंने हिरण का ही चिंतन किया था यम यम वापी स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम भगवान की सुरक्षा पाने से हिरण ने भगवान के साथ अपने संबंध को स्मरण रखा जिससे अगले जन्म में उसका जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ और उसने भक्ति संपन्न की सूचि नाम श्री मताम गे है जोग भ्रष्टो विजायते इसी तरह चित्रकेतु का पतन हुआ और वह राक्षस वृत्रासुर बना किंतु उसकी भी रक्षा की गई इस तरह यदि कोई भक्ति योग के मार्ग से नीचे गिरता भी है तो अंततो गत्वा उसकी रक्षा होती है यदि कोई भक्त दृढ़ रूप से भक्ति योग में स्थित है तो भगवान उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं। कौन्तेय प्रतिजानिहि नमे भक्तः प्रणश्यति, किंतु यदि परिस्थिति वश भक्त का पतन हो भी जाए तो माधव उसकी रक्षा करते हैं। माधव शब्द सार्थक है। माँ लक्ष्मी सभी ऐश्वर्यों की माता सदैव भगवान के साथ रहती हैं, और यदि भक्त भगवान के संपर्क में रहता है तो भगवान के सारे ऐश्वर्य उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवानीतिर् मतिर् मम। भगवान जैसा कि भगवद गीता में कहते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण तथा उनका भक्त अर्जुन अर्थात पार्थ रहते हैं, वहाँ विजय ऐश्वर्य असाधारण शक्ति तथा नैतिकता रहती है। भक्त का ऐश्वर्य कर्मकांड विचार का प्रतिफल नहीं होता, भक्त सदैव भगवान के सारे ऐश्वर्यों द्वारा सुरक्षित रहता है, कोई भी उसे उन्हें वंचित नहीं कर सकता। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस तरह भक्त अपने किसी भी विरोधी द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता, इसलिए भक्त को चाहिए कि जानबूझकर भक्ति मार्ग से विचलित न हो। दृढ़ भक्त की सुरक्षा भगवान द्वारा निश्चित है। इस श्लोक में ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। जब भगवान माँ देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो सारे देवता कंस के कारागार में भगवान की स्तुति करते थे, बल्कि यहाँ पर गर्भ स्तुति दिया गया है, कृष्ण स्तुति नहीं कहा, गर्भ स्तुति। कृष्ण जहां भी जाए वो जगह दिव्य हो जाता है, वैकुंठ हो जाता है। भगवान यद्यपि देवकी के गर्भ में थे, वो गर्भ जो है वैकुंठ ही हो गया था। जहां भगवान है वहीं वैकुंठ है, लेकिन जहां भगवान है वातावरण बिल्कुल दिव्य हो जाता है। तो माँ देवकी के गर्भ में भगवान जब उपस्थित हुए तो जेल का वातावरण बिल्कुल दिव्य हो गया था, और देवकी भी शुचि स्मिता बहुत प्रसन्न रहने लगी, बहुत दिव्य उसके अंग की कांति, मुख की तेज, उसके मुखमंडल के तेज बढ़ गए थे और बहुत प्रसन्न रहती थी। तो कंस को भी ये हो गया कि विष्णु इसके गर्भ में आ गया है। भगवान जहां भी किसी भी परिस्थिति में भी किसी के साथ रहते हैं तो उसका बाह्य और अंतःकरण दोनों शुद्ध हो जाता है। यद्यपि देवकी भगवान को अपने अंतःकरण में धारण की थी, मन में, वसुदेव के मन में भगवान प्रविष्ट हुए और वसुदेव के मन से फिर देवकी के मन में प्रविष्ट हुए। जैसे भगवान को दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है, एक गुरु के माध्यम से और कोई विशिष्ट भक्त के द्वारा, या भगवान की कृपा के द्वारा गुरु भगवान को धारण किया जा सकता है। तो वसुदेव जो महान भक्त हैं, वसुदेव का अर्थ है जो हमेशा सत्वगुण में रहता है, सत्वम विशुद्धम, सत्वम विशुद्धम वसुदेवम, जो हमेशा सत्वगुण धरातल पर रहता है वो वसुदेव है। तो वसुदेव के द्वारा भगवान कृष्ण को देवकी ने अपने मन में अर्थात अपने अंतःकरण में धारण की, अपने अंतः इंद्रियों में। ऐसे भगवान देवकी के गर्भ में नहीं थे, कुक्षी, गर्भ से ऊपर उसके हृदय में। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कहीं भी रह सकते हैं, अगर गर्भ में भी रहें तो गर्भ भी दिव्य हो जाता है। तो ऐसे भगवान जब देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो सारे देवता उनकी स्तुति करने के लिए कंस के कारागार में आते थे, प्रतिदिन कोई ना कोई देवता आते थे, गर्भ की स्तुति किए। जो गर्भ भी दिव्य है, जहाँ भगवान जगत अनंत ब्रह्मांड के जो आश्रय पति हैं, जगत पति हैं, वो देवकी के गर्भ में आश्रय लिए हैं। इसलिए गर्भ की स्तुति की गई है। एक बार गर्भ जो है, एक कथाकार कह रहे थे, एक बार गर्भ जो है भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहा कि मेरा तो बहुत निंदा होता है, समाज में लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा कार्य आपने दिया है जिसको कोई आज तक धन्यवाद नहीं दिया है, थैंकलेस जॉब है, गर्भ में कोई जाना नहीं चाहता है, 9 महीने गर्भ में दूसरा दुख है, 9 महीने गर्भ में शिशु जो है वो दुखी रहता है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो भक्त हैं, वो गर्भ में नहीं जाना चाहते हैं, भजन करके जन्म मृत्यु से परे जाना चाहते हैं। तो गर्भ भगवान से कहा कि ये काम जो है ऐसा है जो कोई भी हमें आज तक धन्यवाद नहीं दिया। तो भगवान ने गर्भ से कहा कि चिंता मत करो, मैं स्वयं गर्भ में आऊंगा तो तुम्हारी स्तुति होगी। अब तुम्हारी इतनी निंदा हो चुकी है, बहुत क्रिटिसाइज हुआ है, लेकिन मैं गर्भ में आऊंगा तो तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए भगवान की नहीं, इस स्तुति का नाम है गर्भ स्तुति। देवता लोग गर्भ की स्तुति किए। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, जितने देवता थे, यम, ब्रह्मा, वरुणेंद्र, रुद्र, मरुतस्तुवंती, दिव्य यस्तवई, दिव्य मंत्र, दिव्य सांग, सांग वेद के मंत्रों से, श्री सूक्त मंत्र है, बहुत सारे दिव्य मंत्र हैं, ब्रह्म संहिता है, यहाँ सामगा, साम वेद के मंत्रों से देवता लोग गर्भ की स्तुति कर रहे थे। कौन कौन थे? यम, ब्रह्मा, वरुणेंद्र, रुद्र, मरुतस्तुवंती, दिव्य, दिव्य अस्तवन से, दिव्य स्तुति के द्वारा देवकी की गर्भ की स्तुति की जा रही थी। तो गर्भ को भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया, स्वयं गर्भ में आकर के गर्भ को मान बढ़ाया, इसलिए गर्भ की स्तुति देवता लोग कर रहे हैं, गर्भ स्तुति। इस श्लोक में सारे देवताओं के जो लीडर हैं ब्रह्मा जी, वो कह रहे हैं कि हे माधव, माधव माने जो लक्ष्मी को हमेशा अपने वक्षस्थल पर धारण करता है, भगवान के वक्षस्थल पर श्री वस चिन्ह है जहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं, इसलिए भगवान का नाम है माधव, या जिनके साथ लक्ष्मी जी हमेशा रहती हैं, नारायण के साथ हमेशा लक्ष्मी रहती हैं। तो ब्रह्मा जी करें कि हे माधव, तथा नते माधव ताव का क्वचित, हे माधव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके भक्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में भ्रशन्ति, गिरते नहीं है, यद्यपि देवकी जेल में कैद है, जेल के चार दीवारियों में कैद है, फिर भी वो दिव्य है, दिव्य अवस्था में, दिव्य भाव में अनुरक्त है। देवकी बिल्कुल प्रसन्न थी, उसके अंग की कांति दिव्य हो गई थी, उसके मुखमंडल से दिव्य तेज निकल रहे थे, यद्यपि वो जेल में कैद थी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके भक्त किसी भी परिस्थिति में न भ्रश्यन्ति, गिरते नहीं, भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, बद्ध सौहृदा जो आपके चरण कमलों में एकांतिक मन से आश्रित हैं, चरणाश्रित हैं, वे भक्त गिर करके भी नहीं गिरते हैं। कभी कभी भक्त ऐसे देखे जाते हैं कि गिर जाते हैं अपने परिस्थिति से, तो भी वे गिर करके भी ऊपर उठ जाते हैं। क्यों? कि त्वया भिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, त्वया भिगुप्ता, वे आपके द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं, आपके द्वारा उनकी रक्षा कर ली जाती है, और विचरन्ति निर्भया, इस तरह से आपके चरण कमलों पर आश्रित होकर के विचरन्ति निर्भया, निर्भय होकर विचरण करते हैं, विचरन्ति निर्भया, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं। त्वया भी गुप्ता, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं देवकी तो आपकी माँ है, आपकी जननी है, वो भी पूर्व काल में बहुत बड़ा तप की है, विष्णु सुतपा के रूप में 12,000 वर्ष तप किए हैं, फिर कश्यप पद्धति के रूप में ये भक्त हैं। भगवान के माता पिता कौन हो सकता है? जो बहुत महान भक्त होंगे वही माता पिता बन सकते हैं। तो देवकी इस परिस्थिति में भी दिव्य है, अलौकिक है। जैसे अग्नि को धुएं के द्वारा आच्छादित कर दिया जाता, धुआं कभी अग्नि को ढक लेता है, या सूरज को बादल ढक लेता है उस समय के लिए ऐसा लगता है, नहीं भी फिर भी सूरज को ढक नहीं सकता है, बल्कि सूरज कुहरे को नष्ट कर देता है। कुहरे से सूरज का प्रकाश आच्छादित हो जाता है, उस समय के बाद सूरज का प्रकाश कुहरे को भी छत बिछत कर देता है। उसी तरह त्वया भिगुप्ता विचरण तिनिर्भया बिना एका निकप मूर्धसु, प्रभु आपके भक्त आपके सुरक्षा में शत्रुओं के मस्तक पर विचरण करते हैं, किसी भी परिस्थिति में बड़े बड़े शत्रुओं को भी पराजित कर देते हैं, वो गिर करके भी ऐसा लगता है। जैसे तीन उदाहरण दिए हैं श्री प्रभुपाद जी, इसमें वैदिक इतिहास में तीन भक्तों का उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि वे गिर करके भी उनकी सुरक्षा आपके द्वारा की गई। तो क्या उदाहरण देते हैं? यथा चित्र केतु इंद्रदुम्न तथा महाराज भरत, जो परिस्थिति बस च्युत हो गए थे, अपने भक्ति के स्तर से गिर गए थे, फिर भी उनकी रक्षा हुई। वहीं पे यहाँ कहा गया त्वया भिगुप्ता विचरन्ति निर्भया बिना एकानिकप मूर्धसु प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी एक और इतिहास अपने जीवन का एक इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि हमारे भक्तों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया गया था डिप्रोग्रामर्स के द्वारा। डिप्रोग्रामर्स वो मुकदमा सालों चलने वाला था। डिप्रोग्रामर्स जिन्होंने हमारे भक्तों के विरुद्ध एक भारी मुकदमा चला रखा था, हमने सोच रखा था कि इस मुकदमा के तय होने में काफी समय लगेंगे, किंतु भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, अतः हम आशा के विपरीत एक दिन में ही मुकदमा जीत गए। वो मुकदमा सालों चलने वाला था लेकिन एक दिन में ही वो मुकदमा श्री प्रभुपाद जी जीत गए। तो श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भगवान अर्जुन को कहे कि अर्जुन घोषित कर दो कि मेरे भक्त किसी भी परिस्थिति में अपराजय रहते हैं, पराजित नहीं होते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो तीन उदाहरण दिए हैं यथा चित्र केतु इंद्रदुम्न महाराज और भरत। किसी भी परिस्थिति बस कोई भक्त अगर गिर जाता है तो भी उसको भगवान रक्षा कर लेते हैं, वो गिर करके भी उठ जाता है। त्वया भिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, क्योंकि भगवान के द्वारा वो सुरक्षित रहता है। जैसे माँ अपने बच्चों की रखवाली करती है वैसे भगवान अपने भक्तों की रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं, गिरने पर भी वो भगवान के द्वारा सुरक्षा कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर न तथा नते माधव क्वचित, तथा नते माधवताव का क्वचित। हे माधव, ब्रह्मा जी करें कि हे माधव, आप समस्त सौभाग्य की देवी लक्ष्मी के पति हैं और लक्ष्मी हमेशा आपके चरणों की सेवा में रहती हैं। लक्ष्मी जी हमेशा चरणों में भगवान की रहती हैं। जो जो समस्त सौभाग्य की देवी है, ऐश्वर्यों की देवी है। लक्ष्मी हमेशा भगवान के चरण का संवाहन करती है। यहाँ भी डायग्रामा में आप देख सकते हैं, पाद सेवनम, वो लक्ष्मी भक्तों को भगवान के चरणों के संबंध के चलते सारा सौभाग्य भक्तों को प्रदान कर देती हैं। जैसे ध्रुव महाराज के लिए, ध्रुव महाराज जंगल में तप कर रहे थे, जहां हिंसक जानवर थे, वो भी 5 वर्ष का बालक, फिर भी भगवान रक्षा किए। और भगवान के संबंध से लक्ष्मी भी उसकी देखभाल करती है, बल्कि स्वयं लक्ष्मी जी उसकी सेवा में नियुक्त हो जाती है, भक्त के सेवा में। भ्रष्यंति मार्गा तोई बद्ध सौहृदा, बद्ध सौहृदा जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है तो वो कभी भक्ति मार्ग से भ्रष्यंति भ्रष्ट नहीं होता है, गिरता नहीं, गिर करके भी उठ जाता है। तो 3 उदाहरण से प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि यद्यपि राजर्षि भरत भजन करने के लिए गए थे और पुलहाश्रम में गंडकी नदी के तट पर भजन कर रहे थे, बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, ससागरा पृथ्वी के अधिपति थे, लेकिन संसार को छोड़कर के जुआ अवस्था में जंगल में भजन करने गए और एक दिन एक मृग शावक कृष्ण मृग की पत्नी जो गर्भवती थी, शेर के दहाड़ सुन करके नदी में छलांग मारी तो उसका बच्चा गर्भ शिशु जो है असमय में गर्भ से श्रावित हो गया, समय से पहले ही गर्भ से बाहर आ गया बच्चा। तो राजर्षि भरत जो है दूरी पर संध्या बंदन कर रहे थे, गंडकी नदी के तट पर संध्या बंदन, यह दृश्य देखे और नवजात शिशु को पानी में बहते हुए देखे तो दया आ गई उनको। भक्त का एक स्वाभाविक गुण है दया, सारे सब प्राणियों के प्रति दया भाव होना, दया सर्वभूतेषु, हर जीव के प्रति दया जो है भक्त का एक गुण है। जैसे भगवान कपिल कहते हैं कि करुण दया कैसे है, तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। साधु का अलंकार क्या, आभूषण क्या है, तो सब जीवों के प्रति दया है, चाहे वो चींटी हो, तुक्ष जीव के प्रति भी दया होना, ये भक्त का आभूषण है। तितिक्षव और सहनशीलता, हर परिस्थिति को सहन करना, जो भक्ति में विकसित हो जाते हैं, भक्ति को विकसित कर लेते हैं तो उनमें सब दिव्य गुण जो है स्वाभाविक उभर जाते हैं। भक्तों में सब दिव्य गुण, देवताओं के दिव्य गुण आ जाते हैं। सर्वई गुणई तत्र समा सते सुरा, या सारे देवता उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं सारे गुणों को लेकर के। तो राजर्षि भरत देखे कि एक नवजात अभी अभी गर्भ से श्रावित हुआ है, शिशु बह रहा है, तो दया बस उसको बाहर ले आए और अपने आश्रम में उसका पालन करने लगे। ऐसे पालन करने जैसे कोई पुत्रवत प्रेम करके स्नेह करके बच्चे का पालन करता है, तो उस मृग शावक को पुत्रवत पालन करने लगे। अपने पुत्र परिवार को जीवावस्था में छोड़कर आए थे और मृग शावक के प्रति उनके अंदर वात्सल्य भाव विकसित हो गया, ममता जागृत हो गई और धीरे धीरे उसके प्रति अगाढ़ प्रेम हो गया, जैसे किसी को अपने बच्चे में आसक्ति होती है। कहीं दूर जाता था तो उसके लिए बेचैन हो जाते, कोई जंगली जानवर न खा जाए। एक दिन किसी कारणवश जंगल में गया और नहीं आया, दूर जंगल में चला गया, रात्रि हो गई, तो उसको खोजने के लिए चले राजर्षि भरत। हिमालय के कंदराओं में उसको ढूंढ रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि इसकी माँ जन्म देकर ही मर गई थी, अनाथ था, इसका मैं ही माता पिता था, माँ तो जन्म देते ही मर गई थी, तो उनमें ऐसी भावना होती कि मैं ही इसका रक्षा करने वाला था, मैं ही इसका माता था पिता था, पता नहीं क्यों नहीं आया। खोज रहे थे, खोजते खोजते हिमालय की एक बर्फ की बड़ी चट्टान खिसकी और उसी में दबकर मर गए। रात्रि में उसको खोज रहे थे तो हिमालय में अनेक बर्फ के बड़े बड़े चट्टान फिसल जाते हैं, तो बड़ा चट्टान का एक शिला फिसला, उसी में दबकर मर गए। तो मृग का चिंतन कर रहे थे तो मृग के चिंतन में फिर अगला जीवन उनको मृग का शरीर प्राप्त हुआ। यम यम वापी स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम, जो जिस भाव में जिस चेतना में जिसकी मानसिक धरातल जैसी होती है वैसा ही शरीर मिलता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि मृग जोनी में भी उनको कृष्ण की चेतना बनी थी, कृष्ण का चिंतन करते थे, उनको याद था कि मैं राजा था, भजन करने के लिए गया था, मृग के बच्चे में आसक्ति के चलते मृग शरीर को प्राप्त हुआ, वो इतिहास उनको याद था कि मैं राजा था। फिर आगे चल कर वही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, दो देह धारण किए, फिर उसी ब्राह्मण शरीर से जिनको जड़ भरत कहा जाता है, जानने के लिए वही राजर्षि भरत जो है ब्राह्मण परिवार मिले, तुमको जड़ भरत था, जानबूझकर मूर्खता जैसा व्यवहार करते थे, यद्यपि बहुत बड़े ज्ञानी थे, व्यवहार में मूर्ख जैसा अपने को प्रदर्शित करते थे, तो सब लोग सोचते मूर्ख है, बहुत बड़े अध्यात्मवादी थे। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं इंद्रदुम्न महाराज का। इंद्रदुम्न महाराज राजा थे और राज में रुचि कम थी, ज्यादा भगवान के भजन में रहते थे, अब मलयाचल में मलयागिरी पर्वत पर भजन करते थे कुटिया बना करके, प्रजा का देखभाल भगवान करते थे। ऐसा कहा गया है कि भगवान के भक्ति में इतना विह्वल हो जाते थे कि प्रजा का देखभाल भगवान करते थे। और मलयाचल पर एक दिन भगवान के ध्यान में अभिभूत थे, उसी समय अगस्त मुनि का आगमन हुआ। अगस्त मुनि आए तो उनको बाह्य चेतना नहीं थी, बाह्य इंद्रियों का अंतर्मुख करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनको भान नहीं हुआ कि कौन आया है क्या है। अगस्त मुनि को ऐसा लगा कि जानबूझ करके ऐसा झूठा ध्यान कर रहा है, शाप दे दिए कि हाथी बन जाओ, कोई आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, किसी के घर में आश्रम में कोई आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, अतिथि देवो भव, कोई भी आता है। लेकिन एक महान ऋषि अगस्त मुनि जिनका प्रभाव की समुद्र को ही पी गए थे, एक बार अगस्त मुनि समुद्र को ही पी गए थे, उनको कुंभज भी कहा जाता है, कह कुंभज कह सिंधु अपारा आ सोखे सुजत सकल संसारा, संसार में यह विदित है कि समुद्र को ही पी गए थे अगस्त मुनि, जबकि उनका जन्म घड़े से हुआ था, कुंभज कुंभ से जो जन्म ले उसको कुंभज कहते, से जानू ऋषि गंगा को पी गए थे। ऐसे अगस्त मुनि जब उस आश्रम में आए और देखे कि इंद्रदुम्न जो है ध्यान ऐसे झूठे ध्यान किया है, उनको ऐसा हुआ कि झूठा ध्यान किया है, तो साप दे दिए कि हाथी बन जाओ। तो अगस्त मुनि के साप थे, इंद्रदुम्न राजा को हाथी का शरीर प्राप्त करना पड़ा। रूपाजी लिखते हैं हाथी जोनी में भी उस हाथी जोनी से ही इंद्रदुम्न को भगवत प्राप्ति हुई। जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति वही सबसे उत्तम शरीर है, से काक भुसुंडी जी कौवे के शरीर में भगवान कृष्ण भावना में, तो वही शरीर दिव्य है। हनुमान जी बंदर के शरीर में है, जिस शरीर से भगवान की भक्ति संपन्न हो वही शरीर उत्तम है। चाहे निम्न कुल में जन्म लिया हो, चंडाल परिवार में जन्म लिया, अगर भक्ति संपन्न कर लिया है तो वो चंडाल कुल ही श्रेष्ठ है। तो गजेंद्र हाथी जोनि से ही भगवत प्राप्ति प्राप्त की है, तो वही श्रेष्ठ है। तो गिर करके भी इंद्रदुन महाराज गिरे नहीं, बल्कि उसी शरीर से उनको एक अनुग्रह प्राप्त हुआ। अगस्त मुनि ने मानो उनको साप नहीं बल्कि वरदान दे दिया। भक्तों के लिए साप भी वरदान हो जाता है कि उसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर ये लागू होता है, भ्रष्यन्ति मार्गा तो बद्ध सौहृदा, बद्ध सौहृदा जो भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया है या उनको चरण कमलों में अपने को समर्पित कर दिया है, वो किसी भी परिस्थिति में न भ्रष्यन्ति, गिरता नहीं है, क्योंकि भगवान उसकी त्वया भिगुप्ता, भगवान के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। त्वया भिगुप्ता विचरन्ति निर्भय, इसलिए भक्त लोग निर्भय होकर विचरन्ति, विचरण करते हैं। और तीसरा उदाहरण है, रूपा जी देते हैं चित्रकेतु। चित्रकेतु भी राजा थे, एक दिन कैलाश के पहाड़ियों में विचरण कर रहे थे विमान से, तो देखे कि शिव जी कैलाश में कथा कर रहे थे और बड़े बड़े ऋषि लोग, विरक्त महात्मा सन्यासी जिस कथा में कथा को श्रवण कर रहे थे, और शिव जी अपने बाम अंग में पार्वती को अपने गोद में बिठा करके कथा कर रहे थे, अपने गोद में बैठाए थे। वहां पर बड़े बड़े विरक्त चूड़ामणि थे, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने आक्षेप नहीं किया, लेकिन चित्रकेतु ने कहा कि ये देखिए शिव जी कथा कर रहे हैं और अपने पत्नी को गोद में बैठाए, कम से कम ब्यास आसन के समय। तो चित्रकेतु एक तरह से दोष इंगित किए, निंदा किए, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि चित्रकेतु ने जो किया वो गलत नहीं था, शिष्टाचार के दृष्टि से वो उचित नहीं था, लेकिन फिर भी शिव जी तो महान भक्त हैं, उनके लिए दोष नहीं है। जैसे आग में आग जो है गंदे को भी जला देता है लेकिन फिर भी आग दूषित नहीं होता है, गंगा में मल मूत्र और अनेक नाले बहते हैं फिर भी गंगा का जल दूषित नहीं माना जाता है, गंगा भसाम खल बुद बुद फेन पंकई, गंगा के जल में अनेक बरसात में मुर्दे भी बहते हैं, कूड़े कचड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर भी गंगा का महत्व कम नहीं होता है। उसी तरह महान भक्त में कुछ दोष भी दिखाई देता है तो उसको दोष नहीं माना जाता है। कैसे है पहला, दृष्टि स्वभाव जनित वपुषस्य दोषै, कभी कभी किसी का भक्त का शरीर विकलांग है या किसी भक्त में कुछ ऐसे दोष हैं तो भी उसको दोष के भावना से नहीं देखना चाहिए। शिव जी के प्रति चित्रकेतु ने दोष देखा कि ये देखिए इतने बड़े विरक्त हैं, दिगंबर हैं, घर नहीं बनाते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, कोई संग्रह नहीं करते हैं, फिर भी स्त्री को गोद में लेकर बैठे और भी कथा कर रहे हैं। तो शिव जी तो नहीं कुछ ये किए, आपत्ति नहीं किए, लेकिन पार्वती जी ने, पार्वती जी को बुरा लगा और पार्वती जी ने साप दे दिया कि असुर हो जाओ। तो माँ पार्वती के साप से चित्रकेतु असुर योनि में वृत्रासुर बने, असुर योनि में भी उनकी कृष्ण चेतना नष्ट नहीं हुई, बल्कि युद्ध भूमि में भी कृष्ण का स्तुति किए, बहुत सुंदर वृत्रासुर का स्तुति है। श्रीमद् भागवतम में वृत्रासुर का जो स्तुति है वो उसको प्राण कहा गया है, श्रीमद् भागवतम का प्राण है वृत्रासुर का स्तुति। परीक्षित महाराज कहे कि वो भी युद्ध भूमि में, वो भी असुर भगवान में अपने मति को कैसे लगाया, युद्ध भूमि में भगवान में अपने मति को लगाना जबकि उसकी भुजाएं कट गई थी, उसके अंग छत विछत हो गए थे। बहुत सुंदर स्तुति वृत्रासुर ने किया है। तो वही चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर शरीर में भी उसी शरीर से भगवत धाम को प्राप्त किए। उनका बहुत सुंदर होता, हम हरे तो उपाधिक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनस मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणित वा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर कहते हैं कि हे प्रभो, अहम हरे तो मेरा अगर जन्म हो तो भगवान के भक्तों के भक्तों के उनके दासों के दासों का दास बनने का मुझे अवसर प्रदान किया। अहम हरे तो पादई के मूलम, जो भगवान के चरण कमलों के जो आश्रित भक्त हैं उनके दासों के दासों का दास मुझे बना दीजिए। अहम हरे तो पादई के मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनस मरेता सुपतेर गुणास्ते, और सदा आपके लीलाओं का मैं मन वाणी क्रम से चिंतन करूं, आपके लीलाओं का हमेशा मैं चिंतन करता रहूं, जिस जोनी में भी जहां भी जिस भी परिस्थिति में रहूं आपका हमेशा गुणगान करते रहूं। बच्चा मनसा बाचा कर्मणा गृणित वा कर्म करो तुकाय। तो इतना बड़ा स्तुति, इतना बड़ा समर्पण वृत्रासुर, तो कैसे आप मान सकते हैं वृत्रासुर का इन चित्रकेतु महाराज का पतन हुआ? पतन नहीं हुआ, उनकी चेतना और बल्कि कृष्ण में बढ़ गई थी। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं आपके भक्तों का कभी पतन नहीं होता है। क्यों? जो आपके चरणों में हमेशा आश्रित रहते हैं, गिर करके भी वो गिरे नहीं माने जाते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है, तथा नते माधव ताव का क्वचित भ्रशंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका निकप मूर्धसु प्रभु। ऐसे भक्त अपने शत्रुओं से कभी विचलित नहीं होते हैं, बल्कि शत्रुओं के मस्तक पर चलते हैं, मूर्धसु शत्रुओं को पराजित कर देते हैं। लाख शत्रु भी हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे भक्त कृष्ण भावना में निर्भय प्रचार करते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा सुरक्षित हैं। बल्कि अपने भक्तों को अपने शत्रुओं को पराजित कर देते हैं, मूर्धसु। हे माधव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं, मूर्धसु। जैसे ध्रुव महाराज काल के मस्तक पर चढ़ करके विमान में चढ़ गए और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? देवकर प्रभु को माइक।
प्रश्न ही जैसा है कि कैसे इन महान भक्तों का, जिनका आपने अच्छी तरह से वर्णन किया, भरत जी का चाहे चित्रकेतु का, कैसे उन लोगों को स्मृति बनी रही, भले ही कई एक जन्म लिए, उनके स्मृति बनी रहे। हम लोग भी जन्म लिए हैं लेकिन हम लोगों के पूर्व जन्म की स्मृति नहीं है, तो ये भगवान की स्पेशल कृपा ही तो है उन लोगों पर ना। ये मेरा प्रश्न भी है और एक तरह से टिप्पणी भी है।
भगवान भक्तों के लिए स्पेशल जो है, जैसे नियम होते हैं रोड पर, नियम है कि रेड सिग्नल में रुकना है, लेकिन बड़ा ऑफिसर है, बड़ा सरकार का सरकारी अधिकारी है तो उसके लिए नियम नहीं है। इसी तरह भगवान का कोई बड़ा अधिकारी है तो प्रकृति के नियम उस पर लागू नहीं होते।
अब मुझे प्रश्न याद आ गया। जैसे ये नलकुबर और मणिग्रीव, उन लोगों को नाराजी श्राप दिए थे तो कहे कि तुम लोगों की स्मृति बनी रहेगी, लेकिन जैसे महाराज इंद्रदुम्न को श्राप दिए ना अगस्त मुनि, तो उन्होंने नहीं कहा कि आपकी स्मृति बनी रहेगी। वैसे ही वृत्रासुर को जब आशीर्वाद दिया और श्राप दिया माता पार्वती ने, तो नहीं कहा कि आपकी स्मृति बनी रहेगी, लेकिन फिर भी उन लोगों की स्मृति बनी हुई थी। इसका कारण क्या था? क्या भगवत भक्ति था उनका कि और कुछ कारण था?
एक बार महाराज इस पर प्रवचन में बता रहे थे कि कोई भक्त जैसे जगत जननी पार्वती जी ने श्राप दिया है, तो माँ अपने बच्चे को अगर श्राप भी देती है तो उसकी रक्षा के लिए, उसके सुधार के लिए कभी बच्चे को माँ मारती भी है। तो जगत जननी है पार्वती जी, तो अपने बच्चे को अगर दंड देती है तो उसके सुधार के लिए, तो माँ पार्वती का श्राप ही वरदान साबित हो गया। सुधारात्मक भी है और वरदान भी है। माँ पार्वती ने श्राप दिया तो श्राप उसी शरीर से भगवत धाम प्राप्त कर लिए। तो बड़े लोगों का दंड भी, जैसे गुरुजनों का, बड़े भक्तों का, अधिकारियों का दंड भी हमारे जीवन में बहुत सुंदर अवसर प्रदान करता है, हमारा सुधार कर देता है। जैसे कुम्हार घड़े को पीटता है तो उसके अच्छा के लिए पीट करके उसको सुडौल बहुत सुंदर बना देता है, फिर आग में उसको तपा देता है, तो जब तप जाता है तो पानी को धारण करने लगता है। उसी तरह माँ पार्वती जी ने सांप देख करके चित्रकेतु की चेतना को और शुद्ध कर दिया, उसकी चेतना शुद्ध हो गई, जिसे कृष्ण का और वो जो है बहुत सुंदर ढंग से चिंतन कर रहा था। तो माँ पार्वती जी का सांप ही चित्रकेतु के लिए वरदान हो गया, बड़े लोगों का सांप भी वरदान हो जाता है। यदि पार्वती जी ने सांप दिया है अगर किसी को बाघ काट दे या शेर पंजा मार दे तो बड़ा सौभाग्य माना जाता है कि शेर के साथ युद्ध किया है, लोग बोलते हैं बहुत बहादुर है और सियार काट दे, कुत्ता काट दे तो लोग नहीं देखेंगे, शेर पंजा मार दिया है तो बोले शेर ने इनको मार दिया था या शेर से टकरा गए, बड़ा सौभाग्य माना जाता है, बहुत बहादुर है, शेर के साथ इसने कुश्ती किया है। तो उसी तरह माँ पार्वती का अभिशाप भी बहुत सौभाग्य है। ऐसे किसी को महाजनों का या महान भक्तों का दंड मिल जाए तो समझिए कि उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे मंदिर के बड़े अधिकारी का साप मिल जाए, दंड मिल जाए, तो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे बरझरी प्रभु हैं, देवकी प्रभु, अगर दंड दे दें, गाली भी दे दें, मार दे दें, तो समझे कि आपका बहुत बड़ा इसमें कल्याण होने वाला है, बहुत बड़ा उपकार होने वाला है। तो ले इसको अगर साप मिल भी जाए तो उसको अनुकूल भाव से ग्रहण कर लेना चाहिए। चित्रकेतु बड़े दन्यता से उसको स्वीकार कर लिए, उसका प्रतिकार नहीं किए। परीक्षित महाराज भी बहुत दन्यता से स्वीकार कर लिए। श्रृंगी ऋषि ने सांप दिया तो प्रतिकार कर सकते थे, उसको नलिफाई कर सकते थे, लेकिन स्वीकार कर लिए। तो कोई अधिकारी का दंड अभिशाप हो तो अगर कोई स्वीकार कर लेता है नम्रता से तो बहुत बड़ा कल्याण होता है, उसका उपकार हो जाता है। महाराज जी प्रवचन में बताए थे, तो उसे ये लागू होता है हम लोगों के ऊपर भी कि मंदिर के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनका दंड भी हमारे लिए अनुकूल है, उसको नम्रता से स्वीकार करना चाहिए, ये शिक्षा है। हरे कृष्ण। तमाल जी हाथ उठे।
हरे कृष्ण। प्रसंग तो बहुत सुंदर चल रहा है और आपने व्याख्यान भी बहुत सुंदर किया। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि पार्वती जी ने तो अभिशाप दिया और जो वरदान के रूप में सिद्ध हुआ, लेकिन शिव जी तो बहुत प्रशंसा किए चित्रकेतु जी की। देखिए पार्वती जी कहे कि हमारे जो भक्त चित्रकेतु जी हैं ये कितने धैर्यशील हैं, आपने अभिशाप भी दिया लेकिन आपको वो कुछ नहीं कहे, वे तो अभिशाप आपको नहीं दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शेर शेर होता है लेकिन शेर कभी और सियार सियार होता है, लेकिन शेर कभी सियार का काम नहीं कर सकता है, शेर शेर और दूसरे का हार धारण नहीं करता है, वो किसी दूसरे के जीव के द्वारा मारे गए किसी भी हार को ग्रहण नहीं करता है।
मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि मान लीजिए शेर किसी को पंजा मार भी दे तो उसमें उसका गौरव होता है, मैं शेर के सामने गया था, शेर से लड़ा था,
तो शेर को भी मतलब मेरा कहने का भाव है कि शेर को भी धैर्यशील होना चाहिए, जैसे शिव जी प्रशंसा करते हैं।
और सियार काट दे तो उसका उतना गौरव नहीं होता है, कुत्ता काट दे, मैं शेर का काटा हुआ मारा हुआ व्यक्ति अगर बच गया है तो बड़ा गौरव होता है, उसका बड़ा नाम होता है, कह सकता है कि मैं शेर के साथ युद्ध किया हूँ। और सियार से कुश्ती कर ले तो जीत भी जाए तो उसमें गौरव नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय है कि पार्वती जी के द्वारा अभिशाप था, ऐसे महान भक्तों के द्वारा दंड भी हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है, ये कहने का अभिप्राय है। तो अधिकारी भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं अगर दंड देते हैं हम लोग तो सुधार के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, माता पिता गुरु या जो भी बड़े अधिकारी हैं तो हमेशा उसके दंड के पीछे उसका उपकार होता है, उसका कल्याण करना होता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, ताई गौर प्रेमानंदे।